नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल कनेक्टिविटी देश में प्रत्येक नागरिक के जीवन को अभिन्न अंग बनाए रखा है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के नवे संस्करण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन दोनों के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी। भारतीय वायुसेना आज अपना 93वां स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश के नव क्षेत्र में रक्षा करने के लिए वायुसेना की प्रशंसा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई विशेषाधिकार या विलासिता नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन का अभिन्न अंग है। श्री मोदी आज नई दिल्ली की यशोभूमि में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी आयोजन इंडिया मोबाइल कांग्रेस के नवे संस्करण का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश को कभी 2G की समस्या थी, अब लगभग हर जिले में 5G कवरेज है। उन्होंने कहा है कि भारत ने हाल ही में अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है, जो देश के लिए एक बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है।
भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है, ये देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है। अब भारत दुनिया के उन 5 देशों के लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य। इंडिजिनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे।
इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब दुनिया के डिजिटल ध्वजारोहक बन गया है। उन्होंने कहा है कि देश ने 2014 में 6 करोड़ इंटरनेट ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं से बढ़कर 94.4 करोड़ ब्रॉडबैंड ग्राहकों तक की जबरदस्त वृद्धि देखी है। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में दूरसंचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें वैश्विक नेता, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ और नवप्रवर्तक एक साथ आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 दिवसीय यात्रा पर मुंबई पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है, जिसकी अनुमानित लागत 19,650 करोड़ रुपये है। ये हवाई अड्डा देश की सबसे महत्वाकांक्षी विनियमन परियोजनाओं में से एक है, जिसका 1,160 हेक्टेयर का विशाल क्षेत्र सालाना 3.25 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो और 9 करोड़ लोगों को संभाल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के उनकी पहली भारतीय यात्रा पर हार्दिक स्वागत किया है। श्री स्टार्मर के साथ ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के एक मजबूत और पारस्परिक रूप से समृद्ध भविष्य को साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए कल होने वाली बैठक का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टार्मर मुंबई में कल ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6 संस्करण में भी हिस्सा लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध अब भी जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा सीटों की मांग के बाद एनडीए के भीतर प्रत्येक घटक दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। भाजपा के बिहार चुनावी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नई दिल्ली में श्री पासवान के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा की और गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास किया। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर गतिरोध तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार की एनडीए के नेता का चेहरा है। उन्होंने कहा है कि सीटों के बंटवारे की घोषणा जल्द ही की जाएगी। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जतिन राम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी का किसी से कोई विवाद नहीं है और वह बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त पर्याप्त सीटों की ही मांग कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना आज अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय वायुसेना विश्व की विशालतम वायुसेना में से एक है।
कल कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। वर्ष 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। नवस्पर्शम दीप्तम टच द स्काई विद ग्लोरी के आदर्श वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना देश की आकाशीय सीमाओं की रक्षा में सदैव तत्पर रही है। युद्ध की स्थिति में शौर्य पराक्रम की पटकथा लिखनी हो या प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय आसमान से मानवीय सहायता पहुंचानी हो, वायुसेना के जवान हर मोर्चे पर मौजूद रहे हैं। वायुसेना दिवस उन वायु योद्धाओं को समर्पित है जिन्होंने त्याग बलिदान और कर्मठता से राष्ट्र के नभ की रक्षा की है। वर्ष 1947-48, वर्ष 1962, 1965, 1971 और 1999 का करगिल, ऑपरेशन मेघदूत, कैक्टस, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, दुनिया ने हर बार भारतीय वायु शक्ति की एक नई धमक देखी है। वायुसेना के बेड़े में राफेल, MiG-29, सुखोई, जगुआर और तेजस जैसे कई उन्नत श्रेणी के लड़ाकू विमान शामिल हैं, जिनकी तेज रफ्तार और सटीक मारक क्षमता दुश्मन का दिल दहलाने के लिए काफी है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने वायुसेना के जाबांज योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में देश की सेवा में अनुकरणीय साहस, प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता सेवा के लिए वायुसेना की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और कई अन्य सफल सैन्य अभियान वायुसेना के अमूल्य योगदान के प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में वायुसेना की वीरता, अनुशासन और सटीकता की प्रतिमूर्ति बताया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने आज कहा है कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। वायुसेना प्रमुख गाजियाबाद स्थित हिडन एयरबेस पर वायुसेना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है।
जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण लगातार 3 दिनों तक स्थगित रहने वाले के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि तीर्थयात्रियों को भवन की ओर बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर मध्य से तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में केरल, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने कल तक बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वस्तु और सेवा कर GST बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रही है। इसकी शुरुआत 22 सितंबर को हुई थी। GST सुधार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिला है, सुनिए इस रिपोर्ट में।
GST में नए सुधार से उत्तर प्रदेश के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसायों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। यह सुधार राज्य के पारंपरिक क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है, जहां GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी जैसे प्रसिद्ध उद्योगों के निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ ही कारीगरों के आजीविका को भी मजबूती मिली है। कानपुर और आगरा के चमड़ा और जूता उद्योग, जिनमें 1,00,000 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, अब 2,500 रुपए तक की कीमत वाली वस्तुओं पर कम GST का लाभ उठा सकेंगे, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को भी बढ़ोतरी मिलेगी। फिरोजाबाद, खुर्जा, गोरखपुर और आजमगढ़ जैसे शहरों में बनी कांच, सिरेमिक और टेराकोटा उत्पादों पर भी अब 5% GST लगेगा, जिससे इनकी मांग में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही मेरठ, वाराणसी और चित्रकूट जैसे शहरों में बने पारंपरिक खिलौने, हाथ से बने कागज और पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी के उद्योगों को भी इस कटौती से लाभ होगा। आगरा का प्रसिद्ध पेठा भी अब 5% GST श्रेणी में आने से सस्ता हो गया है, जिससे छोटे मिठाई कारोबारियों को मजबूती मिली है। नई दरों के साथ ये GST सुधार उपभोक्ताओं के लिए सामान सस्ता बनाने और कारीगरों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। समर्थ के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।